ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾತಃ ಕ್ಲಾಸ್ ಉನ್ನೀಸ್ 1963 ಕೋ ಬಂಬೈ ಮೇ ಚಲಾಯ ಹುವ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಹೇ ಛೋಡ್ ವಿದೇ ಆಕಾಶ ಸಿಂಹಾಸನ್ ಅಭಿ ಯೇ ಗೀತ ಸುನಾ ಐಸೆ ತೋ ಯೇ ಗೀತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೇ ಗಾಯಾ ಜಾತಾ ಹೇ ಔರ್ ವೇದೋ ಮೇ ಭೀ ಆತಾ ಹೇ ಪರಂತು ಸಿವಾಯ ತುಮ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಕೆ ಇಸ್ಕಾ ಅರ್ಥ ಕೋಯಿ ನಹೀ ಸಮಜ್ ಸಕ್ತಾ ಕ್ಯೂಂಕಿ ವಾಸ್ತವ ಮೇ ಗೀತಾ ಮೇ ಯೇ ಬಾತ್ ಆಯಿ ಹೇ ಯಹಾಂ ಸೂರಜ್ ಚಾಂದ್ ಸಿತಾರೋ ಕಾ ಪ್ರಕಾಶ ನಹೀ ಪಹುಂಚತಾ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ ಮೈ ವಹಾಂ ಕಾ ರಹನೆ ವಾಲಾ ಹೂಂ ಕಹತೆ ಭೀ ಹೇ ಊಂಚಾ ತೇರಾ ಧಾಮ ಊಂಚಾ ತೇರಾ ನಾಮ ಊಂಚತೆ ಊಂಚ ಬಾಪ ಊಂಚತೆ ಊಂಚ ಸ್ಥಾನ ಸೇ ಆತೆ ಹೇ ಔರ್ ಗೀತಾ ಮೇ ಜೋ ಯೇ ಬಾತ್ ಆಯಿ ಹೇ ಉಸ್ ಗೀತಾ ಕೋ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವತ್ ಗೀತಾ ಶ್ರೀ ಅರ್ಥಾತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಂತು ಅಕ್ಷರ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಥೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವತಾಂ ಕೋ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೇ ಔರ್ ದೇವತಾಂ ಸೇ ಭೀ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೇ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಕಲಾಂ ಮೇ ಬಾಂಧಾ ಗಯಾ ಹೇ ಔರ್ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ತೋ ಕಲಾತೀತ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲ್ಪಾಂತಕಾರಿ ಕಹತೆ ಹೇ ತೋ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ನಹೀ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ದೇವತಾ ಕಹಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೇ ನರಕೋ ನಾರಾಯಣ ಬನಾನೆ ವಾಲಿ ಗೀತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಹೀ ಗಾಯಿ ಹೇ ಮನುಷ್ಯ ಕೋ ದೇವತಾ ಬನಾನಾ ಸಿಂಗಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾ ಕಾಮ ನಹೀ ಹೇ ಯೇ ತೋ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಥೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಹೀ ಕಾಮ ಹೇ ತೋ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸೇ ಊಂಚಾ ಹೇ ಪರಮ ಪಿತಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಜಿಸ್ಕೋ ನಿರಾಕಾರ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತೋ ಸಾಕಾರ ಥಾ ಸಾಕಾರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇ ರಹನೆ ವಾಲಾ ಊಂಚೆ ಥೇ ಊಂಚಾ ಕೈಸೆ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೇ ವೋ ಸಾಕಾರ ಹೇ ಔರ್ ಯೇ ನಿರಾಕಾರ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕಹತೆ ಹೇ ಕಿ ಆಕಾಶ ಸಿಂಹಾಸನ ಛೋಡ್ ದೇ ಅಬ್ ವೋ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಯಹಾಂ ಕಹಾಂ ಹೇ ಯಹಾಂ ಯೇ ಖೋಯಲ್ ಹೋತಾ ಹೇ ಯೇ ಮನುಷ್ಯೋ ಕಾ ಖೇಲ್ ಹೇ ಮನುಷ್ಯೋ ಸೇ ಊಂಚೆ ಹೋತೆ ಹೇ ದೇವತಾ देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है और देवताओं से भी ऊंचते ऊंचे है भगवान। तो ये मनुष्य और ये देवता कोई आकाश में नहीं रहते हैं, उनका कोई आकाशी सिंहासन नहीं है। ये ऊंचते ऊंच बाप तो रहते हैं ब्रह्म महत्तत्व में, अव्यक्त वतन कहा जाता है, अव्यक्त स्टेज में रहते हैं। और ये बात बाप खुद कहते हैं, कि मैंने ये रूप बदला है, ये कहते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। अगर कोई कहे कि कृष्ण के तन में आते हैं परंतु कृष्ण का तन साधारण कैसे कहा जाएगा, वो तो सतयुग में होता है, गाते भी है हे कृष्ण नारायण वासुदेव, और नारायण को शास्त्रों में सतयुग आदि में दिखाया हुआ है। तो कहां नारायण विश्व का बादशाह, सतयुग का बादशाह, और कहां कलयुग के साधारण मनुष्य। कृष्ण तो आता ही सतयुग में है, उनका तन सतयुग में होता है। सतयुग में जो भी तन होंगे सात्विक तत्वों के होंगे ना, उन्हें साधारण कैसे कहेंगे। अगर कहें कि कृष्ण की आत्मा के तन में आए तो वो तो फिर कहेंगे कि कृष्ण की 84 जन्म की आत्मा है, 84वें अंतिम जन्म की आत्मा, तमो प्रधान, जो अभी जड़जड़ी भूत अवस्था को पाई हुई है। तो उस जड़जड़ी भूत अवस्था को पाने वाले शरीर में मैं आता हूँ, जिस पर पापों का बोझा ज्यादा चढ़ जाता है, बाप कहते हैं कि अभी तो मैं निराकार से साकार में आया हूँ, अभी कृष्ण की आत्मा साकारी से आकारी बनती है संगम में। और मैं आकारी ब्रह्मा में नहीं आता हूँ, कृष्ण के अंतिम 84वें जन्म में जिनका नाम ब्रह्मा पड़ता है वो कृष्ण तो ठहरा ही नहीं। अभी ये जो भक्ति मार्ग के चित्रों में गाड़ी बनाते हैं, घोड़ा बनाते हैं और युद्ध के मैदान में ले जाते हैं, तो ये सारी बातें झूठ हो जाती हैं। युद्ध के मैदान में वो शरीर रूपी रथ दिखाया गया है, जो भारत में अनेक जन्मों में वीरता के लिए प्रसिद्ध है। इंद्रियों को ही घोड़ा कहा जाता है। कठोपनिषद में भी बोला है, शरीरम रथनम वृद्धे इंद्रियाणि हयान्याहु। और युद्ध का मैदान ये पांच विकारों के युद्ध की बात है। रावण को 10 सिर देते हैं ना, पांच विकार स्त्री के, पांच विकार पुरुष के। तो रावण कौन है? ये तो कृष्ण की आत्मा अंतिम 84वें जन्म में जान भी नहीं पाती है कि रावण कौन है। इसलिए बाबा ने मुरली में बोल दिया, रावण कौन जरूर ये गुरु लोग। और जो भी गुरु लोग मनुष्य गुरु हुए, देह अभिमानी गुरु हुए, उनमें बड़े से बड़ा गुरु कौन? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट तो ये साधारण गुरु हुए उस मुकाबले में, क्योंकि इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट तो फिर भी ब्रह्मा की ही गोद में खेलते हैं। ये इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जिस देहधारी का नाम दिया जाता है, वो देहधारी आधार मूर्त आत्मा है, तो ब्राह्मणों की दुनिया में इकट्ठी हो जाती है। अभी बाप बैठ करके समझाते हैं कि राइट बात क्या है, सत्य क्या है और झूठ क्या है। गाते भी हैं, राम नाम सत्य है, अंत में जाकर के प्रत्यक्षता होती है। बाकी तो सब की डूबी जा हो जाती। झंडारोहण करते हैं, उसमें भी ऊपर के लाल कपड़े में दिखाते हैं सत्य में वजयते, वो ऊंचते ऊंची स्टेज है, जो परम पुरुषार्थ के आधार पर साकारी सो निराकारी बन जाता है और शिव के साथ उसका नाम लिया जाता है। भगवान बाप आकर के आप समान बना देते हैं, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। तो अब बाप आकर के समझाते हैं कि झूठ कौन है और सत्य कौन है। बाप आकर बोलता है ना, मैं सभी वेदों का सार सुनाता हूं, वो पुस्तक के रूप में जो वेद बनाए हैं वो तो मनुष्यों ने बनाए हैं, वो तो भक्ति मार्ग की यादगार मात्र हैं। कोई भी धर्म पिता इस सृष्टि पर आकर के पुस्तकें नहीं लिखता है, वो तो रूबरू बोलते हैं। सभी धर्म पिताओं ने भगवान को फॉलो किया है, भगवान भी अपने बच्चों के सामने रूबरू बोलता है। पहले मां के रूप में बोलता है, जिसे गीता ज्ञान कहा जाता है। परंतु आज की भी दुनिया में कोई वेद नहीं पढ़ता, क्योंकि वेदों को कोई समझता ही नहीं है, वेदों की भाषा किसी के समझ में नहीं आ सकती। जैसे भगवान बाप आकर के ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी उच्चारण करते हैं, तो वो मुरली की असली भाषा यथार्थ अर्थ किसी को समझ में ही नहीं आता है। इसलिए वो ब्रह्मा की बोली हुई फर्स्ट क्लास वाणी तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गया, जिसके मुख से यथार्थ रूप में वेदवाणी चलाई गई। परंतु सेकंड क्लास वाणी भी नहीं मिलती, क्योंकि गुरु लोग उसे भी छुपाए देते हैं, फाड़ देते हैं, फेंक देते हैं। और अगर मिल भी जाए तो बूढ़े तन की बूढ़े मुख से निकली हुई वाणी, पोपली आवाज की वाणी कोई को समझ में ही नहीं आती है। साकार वाणी जिसे गीता ज्ञान कहा जाता है, गीता अमृत नहीं कहा जाता, वो वाणी का भी ब्रह्मा के द्वारा जो स्पष्टीकरण होता है वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा व्यक्त वाणी कही जाती है। परंतु वो अव्यक्त वाणी इतनी धीमी आवाज में धीमी गति से चलती है कि एक या दो घंटे की वाणी सारी रात चलाई जाए, कॉन्सेंट्रेटेड होकर के कोई सुने तो भी नहीं सुन सकता। और आज की कलयुग की दुनिया में इतना किसी के पास टाइम नहीं है जो एक घंटे की वाणी को 12 घंटे में बैठ करके सुने। तो वो वेदवाणी में सार क्या है? वो ब्रह्मा की आत्मा भी क्लियर नहीं कर पाती। आखिरी परमपिता परमात्मा शिव को आना पड़ता है ये बताने के लिए कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। ये बात बाप आकर के समझाते हैं। अब ये बोलते हैं ये तो श्रीमद् भगवद् गीता को बहुत मानने वाला था। वो गीता पढ़ते आते थे, वो तो पढ़ते ही थे और सुनाते भी थे, परंतु वो गीता अभी नहीं सुनाते हैं। अभी बाप ने आकर के समझाया है बच्चे, ज्ञान सागर पतित पावन कृष्ण को तुम लोग कह देते, लेकिन वास्तव में तुम कह नहीं सकते। उसके द्वारा कोई भी पतित से पावन नहीं बनता। वो ज्ञान का सागर नहीं कहा जा सकता। वो तो सृष्टि वृक्ष का पत्ता है, पत्ते में बीज नहीं समाया हुआ होता है, लेकिन बीज में सारा धार समाया हुआ होता है। हाँ, ये कहेंगे कृष्ण तो पावन दुनिया का मालिक है, स्वर्ग का मालिक है, सतयुग का मालिक है, विश्व का बादशाह नहीं है। भारत में जो विश्व है उसका प्रिंस कहेंगे। तो जब शादी स्वयंवर रचता है तब राधे और कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। परंतु वो सतयुग के कृष्ण का गायन नहीं है। सतयुग की कोई स्थिति शास्त्रों में नहीं है। ये तो सारा गायन इस संगम युग का है, जब परमपिता परमात्मा प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर आते हैं। बाप आते ही है विश्व की बादशाही देने के लिए। तो वो संगम युगी कृष्ण है जिसके तन में कृष्ण की आत्मा भी प्रवेश करके पार्ट बजाती है, परंतु शरीरधारी का गायन होता है, आत्मा का गायन नहीं होता है। आत्मा का अपना शरीर हो तब गायन हो। तो संगम युगी कृष्ण को कहा जाता है विश्व महाराजन विश्व महारानी। सिवाय नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बने विश्व की महारानी और महाराजन कोई बन ही नहीं सकते। वो एक ही हैं जो डायरेक्ट नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं। बीच में प्रिंस और प्रिंसेस बनने की भी दरकार नहीं। ऐसे ही सिवाय श्री सीता और श्री रामचंद्र तो त्रेता में विश्व के महाराजन और विश्व के राजन उनको महाराजा नहीं कह सकेंगे, क्योंकि वो तो दो कला कम हो जाते हैं। और सतयुग में विश्व धर्म होते भी नहीं तो त्रेता में भी होते नहीं। ये विश्व धर्मों की बात सिर्फ कलयुग के अंत में संगम युग की बात है, जो गीता के पहले ही श्लोक में आई है। धर्म क्षेत्र अनेक प्रकार के धर्मों की युद्ध क्षेत्र में भगवान आते हैं, जबकि सभी धर्म इस संसार में आपस में लड़ते हैं, बहुत अशांति हो जाती है। तो इन बातों को अच्छी तरह से समझो। ये बातें बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। हे बच्चे, जब जब भारत में अति धर्म ग्लानी होती है, भारत महान दुखी बन जाता है, कौड़ी मिसल बन जाता है, तब मैं भारत को फिर से हीरे मिसल बनाने के लिए अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। जो धर्म प्रायः लोप हो गया है, अब कोई बतावे कि धर्म की अति ग्लानी क्या सतयुग में होती है? जो नरसिंह अवतार के रूप में आया क्या त्रेता में होती है? त्रेता भी तो 14 कला संपूर्ण गाया हुआ है। राम राज्य का तो कितना वर्णन है। जो आज के गांधी बापू ने भी गुहार लगाई राम राज्य के लिए, तो त्रेता में भी धर्म की ग्लानी नहीं कहेंगे। और द्वापर में जो और धर्म आते हैं वो तो आदि में होते ही हैं सात्विक। दुनिया की हर चीज पहले सात्विक स्टेज में होती है, बाद में तामसी बनती है। तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जो द्वापर में आदि में आए उनको उस समय सात्विक कहेंगे या तामसी कहेंगे, धर्म ग्लानी की तो बात ही नहीं। ये धर्म की ग्लानी होती है कलयुग के अंत में, जब सब धर्मों की आत्माएं इस सृष्टि पर उतर आती हैं। उस समय भारत महान दुखी बन जाता है, कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज बन जाता है। ये कोई जमीन की बात नहीं है। जो जमीन को कह देते हैं भारत माता, ये तो कोई व्यक्ति की बात है। अर्थ भी है उसका भारत, भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जिसके अनेक जन्म ज्ञान की रोशनी में ही व्यस्त रह करके बीतते हैं। ऐसी श्रेष्ठ पाठधारी, हीरो पाठधारी आत्मा, हीरे समान जन्म लेने वाली कौड़ी मिसल बन जाती है। हीरा उसे कहा जाता है जिसमें से रोशनी ही रोशनी निकलती रहती है, चाहे वो व्यास के रूप में निकले, चाहे वाल्मीकि के रूप में निकले, चाहे तुलसीदास के रूप में निकले। वो ही भारत है कलयुग के अंत में आकर के इतना देह अभिमानी बन जाता है कि मन बुद्धि रूपी आत्मा में कौड़ी ही याद रहती है, उसको कहते हैं कौड़ी मिसल। तब मैं भारत में फिर से आता हूं, कौड़ी मिसल भारत को हीरे तुल्य बनाने के लिए। और अल्लाह अव्वल दीन के अव्वल नंबर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। जो धर्म खास भारत में प्रायः लोप हो जाता है, अर्थात बहुधा लोप हो जाता है, बहुत ढूंढने से कहीं अंश मात्र ऐसे परिवार मिलते हैं जहां सतयुग की तरह सामूहिक व्यवस्था चलती है। नहीं तो आज की दुनिया में घर में घर घर में पारिवारिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी है। बाबा ने तो बहुत बारी समझाया है कि प्राय मनचित्र है, क्योंकि गीता का नाम भी झूठा रख दिया है, क्योंकि काम ही झूठा हो गया कृष्ण का नाम डालने से। बाप समझाते हैं जो गीता ज्ञान का शास्त्र मैंने सुनाया वो ज्ञान कोई वेद ग्रंथ उपनिषद शास्त्र जप तप तीर्थ दान पुण्य आदि में नहीं मिलता है, ये सब भक्ति मार्ग के रास्ते हैं। द्वापर से कलयुग के अंत तक ये होते आए हैं, सतयुग त्रेता में भक्ति मार्ग होता ही नहीं। बुद्धि एकाग्र रहती है, वहां कोई की भी बुद्धि भटकती नहीं है। भटकती नहीं है, भागती नहीं है, तो वहां भक्ति मार्ग होता भी नहीं है, क्योंकि जो भक्त होते हैं मंदिरों में तीर्थयात्राओं में भटकने वाले भागने वाले, वो भगवान को याद करते हैं धक्का खाने के लिए, क्योंकि जानते तो हैं ही नहीं कि भगवान का नाम क्या है, रूप क्या है, एड्रेस क्या है, पता ही नहीं है तो कहां जाएंगे। धक्के खाते रहते हैं। स्वर्ग में तो कोई भी भगवान को बुलाने के लिए धक्का नहीं खाता, इसलिए उनका नाम ही रखा गया है स्वर्ग। स्व माने अपनी आत्मा, ग माने गया, अपनी ही आत्मिक स्थिति में गया, माना भगवान की निराकारी स्टेज में गया। सब देवताएं निराकारी स्टेज को याद करने वाले होते हैं, तो भटकने की बात ही नहीं है। और आज की दुनिया का तो नाम ही है नरक है। नर माने मनुष्य, का माने करने वाला। आज की दुनिया जो बनाने वाला है वो मनुष्य है। मनुष्य विकारी होते हैं, विकारियों का काम है रौरव नरक बनाना। स्वर्ग की रचना तो सदा सही स्थिति में रहने वाला भगवान ही कर सकता है। वो सारी दुनिया को पावन बनाता है। भारत सतयुग स्वर्ग था, पावन था, वही भारत आज कलयुग में पतित बन गया है, नरक बन गया है। ये बहुत समझने की बातें हैं, तो ये समझने समझाने की बातें भी बाप आकर के समझाते हैं। ये धर्म की स्थापना का अर्थ फिर आया हुआ है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि गीता सुनाने वाले कोई धर्म की स्थापना करते हैं, न सुनाने वाले न गीता पढ़ने वाले कोई भी धर्म की स्थापना नहीं कर सकते। वो तो भक्ति मार्ग है, उस भक्ति मार्ग में तो उनको रट्टा लगाना ही है। शिव बाबा बोलते हैं भक्ति मार्ग में उपनिषद, वेद, यज्ञ, ये कोई शास्त्र नहीं है। बोलते हैं हे बच्चे, तुम्हारा जो भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उनका धर्म शास्त्र एक ही श्रीमद् भगवद गीता है। अभी प्रश्न उठता है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था? नाम ही है आदि और फिर सनातन। सनातन कहा जाता है पुराने से पुराने को, जो आदि के में ही, आदि में ही हो सकता है। जब नई सृष्टि की आदि हुई तो जरूर सतयुग में ही होगा। अभी जो बाप ने आकर के धर्मशास्त्र का ज्ञान दिया, ये ज्ञान कब दिया? क्या सतयुग में आकर के दिया? नहीं, सतयुग तो है ही सात्विक युग। सात्विक युग में ज्ञान देने लेने की दरकार नहीं रहती। ज्ञान तो धारणा में समाया हुआ होता है। आज की दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि गीता ज्ञान मेरी बुद्धि में समाया हुआ है, धारणा में समाया हुआ है। सतयुग तो पावन था, पावन सतयुग में ज्ञान देने की दरकार ही नहीं। सतयुग में राजाओं का इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, मैं कभी ये आकर के ज्ञान दिया ये तो कोई लिखा ही नहीं है, कोई शास्त्र में नहीं लिखा है। तो वो बाप कहते हैं तुम बच्चे भी जानते हैं कि बरोबर जरूर कलयुग के अंत में ही होगा, क्योंकि पतित दुनिया पतित मनुष्य कलयुग के अंत में ही होते हैं, पावन सतयुग के आदमी होते हैं। जब पतित होते हैं पतित दुनिया होती है तो पावन एक भी नहीं होता है। तो वो बात फिर शिव बाबा समझाते हैं, ये बातें सुनते हो इन्हें ब्रह्मा की तरफ नहीं देखो, ये नहीं समझाते हैं। ये तो जन्म मरण के चक्र में अभी ही भी आने वाला है और ये बहुत जन्म के अंत का जन्म का सड़ा हुआ सतो प्रधान शरीर नहीं है, तमो प्रधान शरीर है। ये पुरानी जूती है, पुरानी जूती को क्या किया जाता है, है? क्या करते हैं, फेंक दिया जाता है न कि पुरानी जूती को बैठ करके विश्व का मालिक बना देंगे, बना देंगे क्या? अभी समझा, आत्मा भी पुरानी तमो प्रधान है और शरीर भी तमो प्रधान है, इसलिए तमो प्रधान भारतवासी है। ये शरीर भी पुराने हैं, कंगाल भी है, तमो प्रधान भी है, भरतनाट्य कौड़ी है, कहा जाता है ना कौड़ी मिसल जीवन। अभी देखो बरोबर है ना, अच्छी तरह से देखो बाबा कितना समझाते हैं। भारत सतयुग के आदि में ये और कलयुग के अंत में ये कौरव हैं, ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य यानी आसुरी संप्रदाय है। देखो वो रावण अभी निकला है ना, इस समय में सभी आसुरी संप्रदाय हैं, क्योंकि राज्य रावण का है, यथा राजा तथा प्रजा। हर एक मनुष्य वृक्ष से जन्म लेता है। गुरु नानक कहते हैं अमृत छोड़ करके वृक्ष काहे को खाते हो, सिख लोग भी आजकल तो सिंधी लोग भी बहुत भागवत ग्रंथ आदि पढ़ते हैं, और ये ठिकाने आदि रखते हैं, बनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। कहते भी हैं मानुष को देवता किए करतन लागी वार, कहते हैं कि भगवान आते हैं, ये सब बच्चे हैं, चाहे सिख हो या सिंधी हो। फिर ये असुर क्यों कहते हैं? परंतु नहीं, बाबा कहते हैं अपने गुरु नानक को देखो, वो क्या कहते हैं? कहते हैं असंख्य चोर हराम को। चोरी छिपके की जाती है ना, या सरेआम बाजार की जाती है, कैसे करते हैं? असंख्य पापी हैं, पाप ही करते आए हैं। परंतु ये कब की बात है? असंख्य चोर हराम घोर, क्या सतयुग की बात है, त्रेता की बात है, द्वापर की बात है? द्वापर में भी तो आठ कलाएं होती हैं। ये तो कलयुग की बात है और कलयुग में भी अंत कलयुग की बात है। यह असंख्य चोर हराम खोर भी तब से कहना शुरू किया जबकि आज से 5500 वर्ष पहले गुरु नानक आए थे। जबकि तुलसीदास ने भी कहा, भय वर्ण संकर सब है, सात शूद्र हो गए। तो सब 5500 वर्ष पहले से तो जो अभी कलयुग है वो तो और ही तमो प्रधान बन गया है, तो और भी जास्ती पापी बन गए होंगे। ये अक्षर भी है ना, तुम लोग पढ़ते हो, बोलते भी हो असंख्य कुड़ियार कूड़े फिराए, ऐसे अक्षर है ना, क्या वो झूठ बोलते हैं? वो भी ऐसे कहते हैं ना, और मनुष्य भी कहते हैं झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। तो सारा संसार झूठा क्या द्वापरों कलयुग आदि में होता है? सारा संसार झूठा तो होता ही है कलयुग के अंत में। और ग्रंथ के भी यही वो कहते हैं, देखते हैं नई सोल है ना, सतो प्रधान सोल है, 500 साल पहले आई थी गुरु नानक, वो शरीर में आकर के कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं क्या है यहां? असंख्य पापी हैं, पाप करके जाते हैं, और बरोबर इस समय में सभी ऐसे हैं। अब सारी दुनिया को तो ऐसी महिमा नहीं देंगे, सारी दुनिया अर्थात सारी सृष्टि, सारी सृष्टि अर्थात सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चार युग, वो आदि में भारत की महिमा है, एक गीत भी गाते हैं, क्या भारत की दुर्दशा हो गई। और तो साफ समझते हो, बरोबार भारत में सतयुग में क्या था, उसको कहा जाता है सुखधाम, अभी तो दुखधाम है। और फिर शिव बाबा बैठ करके समझाते हैं, जहां से हम आत्माएं आती हैं वो है शांति धाम। ये तीनों धाम याद रहते हैं, कौन से तीनों धाम? शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। अच्छी तरह से याद करते रहो। हम चक्कर लगाते हैं ना, भारतवासी पहले सुखधाम में पीछे दुखधाम में और लास्ट में शांति धाम में जावेंगे, शांति धाम से फिर आएंगे सुखधाम में। इसी को कहा जाता है सुदर्शन चक्र। स्व को दर्शन हुआ, हम भारतवासी आज सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, अभी ये तो इन बातों को नहीं समझते हैं। परंतु भारत के तो थे बरोबर ना, कौन नहीं समझते हैं इन बातों को है? ये सिख आदि की बात हो रही ना, ये हैं तो भारतवासी ही। भारतवासी आदि सनातन प्राचीन भारत में सदा सुखी थे। अभी भारतवासी इस समय पतित सदा दुखी है। समझो कि कोई भी एक भी मनुष्य सुखी नहीं है। ये बाप समझाते हैं बच्चे, जिस निराकारी दुनिया से तुम आते हो वो तुम्हारा शांति धाम है, इसको स्वीट होम कहा जाता है। और स्वीट होम उसको कहा जाता है जहां माता पिता रहते हैं। तुम गाते हो, तुम माता पिता हम बालक तेरे, परंतु भक्ति मार्ग में पता ही नहीं पड़ता है किसी को कि किसके लिए गाते हैं। अब ये कहते हैं तुम भक्ति मार्ग में गाते आए हो, माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। ये भारतवासी गाते हैं ना, और कोई धर्म नहीं गाएंगे। घनेरे सुख पाते ही नहीं है तो गाएंगे कहां से? जानते हैं कि जब तुम माता पिता आते हो, आकर के माता पिता बनते हो, तब फिर आपका हम बच्चे बन करके बहुत सुख आपसे लूटते हैं। कैसा सुख लेते हैं? घनेरे सुख लेते हैं। और कहां के सुख? वो आएगा ही स्वर्ग रचने के लिए। तो कहते हैं कि हम स्वर्ग के घनेरे सुख पाते हैं, अभी तो वो घनेरे सुख नहीं है, जो हो करके गया है वो ही गाया जाता है। तो ये महिमा किसकी है? सुख घनेरे होते ही स्वर्ग में है। बाप बैठ करके ये समझाते हैं कि हे बच्चे, ये जो भगवत गीता मनुष्य की बनाई हुई है ये कहां से आई है? क्योंकि सतयुग और त्रेता में तो कोई भी शास्त्र नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता। वहां कोई भी भक्ति मार्ग का चिन्ह नहीं, कोई भी वहां क्रियाकर्म आडंबर नहीं होता, क्योंकि वो तो स्वर्ग है ना, उसमें धक्का खाने की कोई बात ही नहीं है। बाबा तो साफ साफ कहते हैं, ये वेद ग्रंथ उपनिषद शास्त्र वगैरह वगैरह जो भी तुम भारतवासियों ने बैठ करके बनाए हैं, ये सब झूठे हैं। देखो कैसी साफ बात बताते हैं, क्यों बताते हैं, बताते भी हैं फिर समझाते भी हैं कि देखो अभी जो इतने शास्त्र हैं ये तो तुम 2500 वर्ष से पढ़ते आए हो, पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते सदगति हुई और ही दुर्गति होती गई। तुमको मालूम नहीं है, तुम्हारे विद्वान आचार्य पंडितों को भी मालूम नहीं है, ये भी जो पंडित था कोई समय में, इनको ये मालूम ही नहीं है कि सत्ययुग त्रेता में शास्त्र होते ही नहीं है। ये शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं। अच्छा मैंने बैठ करके तुमको सहज राजयोग सिखलाया और अभी भी सिखलाए रहा हूं और कहता हूं ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, फिर बाद में ये ज्ञान देवताओं में होता ही नहीं है। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का खुलता है, किसका है, तुम ब्राह्मणों का, माना जो बाप के सन्मुख आकर सुनते हैं उनको कहा जाता है तुम ब्राह्मण, बाकी जो और 8 पुरियों के ब्राह्मण हैं उनका तो ये तीसरा नेत्र खुलता ही नहीं है। ओम शांति।